भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के संविधान की धारा 52 आर्टिकल 52 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 धारा 53 एक आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की समूची कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी जिनका प्रयोग या तो वह प्रत्यक्ष रूप में स्वयं करेगा या संविधान के अनुसार अपने अधीन अधिकारियों से करवाएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53(1) वास्तव में समूची कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रयोग की जाती हैं। संविधान की धारा 77(1) आर्टिकल 77(1) के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 77(1) राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है जिसकी व्यवस्था संविधान की धारा आर्टिकल 74 में की गई है। संविधान सभा में राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉ बी आर अम्बेडकर ने कहा था, हमारे राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो बर्तानिया के संविधान के अनुसार वहां के राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज सेम पोजिशन एज द किंग अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज हेड ऑफ द नेशन बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पेज 124। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान की धारा 58 के अधीन राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। एक, वह भारत का नागरिक हो। दो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीन, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यताएं रखता हो। चार, वह भारत सरकार राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन ना हो। पांच, धारा 59(1) के अधीन वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी का भी सदस्य है तो उसका स्थान उस दिन से ही रिक्त समझा जाएगा जिस दिन से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। धारा 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। धारा 57 के अनुसार राष्ट्रपति बार बार अपने इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और इस पर बार बार राष्ट्रपति चुने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं, परंतु आज तक हमारे देश में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना गया। 1957 में रघुनाथ सिंह द्वारा लोकसभा में और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भूपेश गुप्ता द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया था, परंतु यह प्रस्ताव कानून मंत्री श्री अशोक सेन की प्रार्थना पर वापस ले लिया गया था और इस व्यवस्था को प्रथा पर छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना वकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान की धारा 56 (1) के अनुसार कार्यकाल पूरा होने से पहले भी निम्नलिखित स्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। एक, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को भेजता है। दो, यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। तथा तीन, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा पद से अलग कर दिया जाए। रिक्त पद को भरना, टू फिल द वेकेंट ऑफिस। धारा 62 के अधीन व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद को भरने के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए, परंतु यदि त्याग पत्र के कारण अथवा मृत्यु के कारण या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले अचानक रिक्त हो जाए तो अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाना आवश्यक होगा। नया राष्ट्रपति चुने जाने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन। 1969 में पास किए गए प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट के अधीन व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 1969 में श्री बीवी गिरी द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिए जाने पर उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। राष्ट्रपति को पद से अलग करने की विधि, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान की धारा 61 के अनुसार निम्नलिखित विधि के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के दोष में महाभियोग का मुकदमा इम्पीचमेंट चलाकर पद से अलग किया जा सकता है। 1. राष्ट्रपति को पद से अलग करने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 2. प्रस्ताव पेश करने के लिए संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। 3. अभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन को कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 4. इस प्रकार पेश किए गए प्रस्ताव को यदि सदन समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उस सदन में प्रस्ताव पास समझा जाएगा। 5. एक सदन द्वारा प्रस्ताव पास हो जाने के बाद दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा सदन में पेश हो सकता है, परंतु यदि दूसरा सदन भी समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से अलग कर दिया जाता है। पेज 125। राष्ट्रपति को पद से अलग करने की विधि की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद से अलग करने की विधि की निम्नलिखित आलोचना की गई है। 1. संविधान का उल्लंघन एक अस्पष्ट धारणा है। 2. राष्ट्रपति को पद से अलग करने की विधि में राज्य विधानसभाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। 3. संसद के नियुक्त किए गए सदस्यों को महाभियोग की प्रक्रिया में भाग क्यों दिया गया है? क्या वे राष्ट्रपति का साथ नहीं देंगे? 4. दूसरे सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की छानबीन कौन करेगा? 5. राष्ट्रपति को अपना पक्ष पेश करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। 6. क्या राष्ट्रपति महाभियोग के दौरान लोकसभा को भंग कर सकेगा? संविधान में स्पष्ट नहीं। 7. पद से अलग किए जाने की अवस्था में अयोग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, सैलरी अलायंसेस एंड अदर फैसिलिटीज टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते निश्चित करने की शक्ति धारा 59(3) के अधीन संसद को प्राप्त है तथा संसद द्वारा दिसंबर 2008 में पास किए गए कानून के अनुसार राष्ट्रपति के वेतन में 3 गुना वृद्धि किए जाने की व्यवस्था की गई है। आज राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्त होने के बाद उसको वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में प्राप्त होगा और कार्यालय के रखरखाव के लिए 60,000 रुपए वार्षिक प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को रहने के लिए बंगला और चिकित्सा सुविधाओं आदि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते यदि का वेतन और भत्ते आदि संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से दिए जाते हैं और ये उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति को वेतन पर आय कर नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट धारा 361 के अधीन प्राप्त विशेषाधिकारों के अधीन एक राष्ट्रपति को अपने अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसे ना तो कैद ही किया जा सकता है ना ही उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा ही चलाया जा सकता है। और तीन राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 मास का नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।